कुछ लोग बातें करते थे, करो रंगनाथ भगवान की। तो साउथ इंडिया में एक ऐसे विशेष प्रकार के लोग हैं जिनका नाम है अलवर, अलवा, अलवा कहते हैं उनको। हाँ, ये अलवा जो है ये बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। इनमें 12 अलवार पुरुष थे और एक अलवार माताजी थी, कन्या, उसका नाम है अंडाल। हाँ, तो अभी हम लोग एक अलवार के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी ये इतिहास में रंगनाथ के, भगवान के रंगनाथ क्षेत्र के जो मंदिर का इतिहास है उसमें उनका बड़ा सहयोग है। हाँ, इनका नाम है क्या, तिरुमंगाई अलवार, तिरुमंगाई अलवार। क्या बोलेंगे इसमें, तिरु क्या है, तिरु श्री, मंगाई क्या है, नाम है उनका, अलवार उनकी पद्मी है। तो ये तिरुमंगाई जो अलवार थे ये एक जमींदार के बेटे थे और जमींदार के बेटे में नॉर्मल जीवन जी रहे थे अपना, धनी दौलत का जीवन, ऐश्वर्य का जीवन। तो उस जीवन के बीच में उनका एक कन्या पर मन आया, उसका नाम था कुमुदबाली। कुमुदबाली पर उनका दिल आया और उसके पहले ये बड़े ऐशो आरामी थे, भौतिक दुनिया में आराम से जी रहे थे भोग लेते हुए। जब कुमुदबाली से उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो कुमुदबाली ने कहा कि आप हर रोज 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाइए तब मैं आपको हाँ बोलने के बारे में सोचूंगी। तो इस कन्या का हाथ विवाह में प्राप्त करने के लिए तिरुमंगाई ने क्या किया, हर रोज 1000 वैष्णवों को भोजन करना आरंभ कर दिया। ये स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है इस प्रकार का होता है, एक बार दिल आ गया तो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो अपना सारा भाग्य सारा काम छोड़ के दिन रात 1000 वैष्णवों को बुला के जबरदस्ती खाओ खाओ खाओ, मतलब पहले उसका भाव ऐसा था उसकी प्राप्ति करनी है इसलिए आपको खाना है, मैं अधिकारी हूँ, पावरफुल आदमी हूँ, मेरा सुनो और चुपचाप खाना खाओ और खाओ, बाद में रिपोर्ट लिखना कि हमने इतना आइटम खाए, ये भाव था उसका जोर ज़बरदस्ती का। हाँ, लेकिन वैष्णवों की सेवा करते 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 एक दिन उनको वैष्णवों की सेवा का रुचि लग गया, वो वेरी हैप्पी, ये बिकेम वेरी हम्बल। उनके परण चरण पकड़ के, चरण धो के, दक्षिणा दे के, दंडवत प्रणाम करके उनको भोजन करना शुरू किया उसने। और फिर उसका ये निश्चय देखकर और वैष्णवों की सेवा में आई हुई रुचि को देखकर, क्योंकि कुमुदबाली बड़े भगवान के भक्त थी, वो शी डिडंट वांट टू मैरी बिकॉज ही वाज लैंड लॉर्ड सन, वांटेड टू मैरी अ वैष्णव। और मैंने एक जगह सुना था कि ये जमींदार के पुत्र थे और डकैत भी थे, इनके पास में मतलब सब जगह डकैती भी करते थे, मतलब बुरे संगत में थे और बुरा व्यवहार में थे। हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में रामचरण प्रभु ने एनुअल डे में इसका ड्रामा भी किया था, तिरुमंगाई अलवार का। हाँ, तो ये डकैत जो है अपने साथियों को लेकर, भाला वाला लेकर, सब वैष्णवों को भाला दिखाकर खाना खिलाते थे ए खाओ खाओ करके, सब डर के मारे खाना खाते थे, भूख नहीं फिर भी खाते थे, भाला दिखा रहा है वो, या तो लड्डू खाओ तो भाला घुसाओ, दोनों में से एक ना, लड्डू खाना अच्छा है इसलिए वो धीरे धीरे उसका भाव बदली हो गया। वो हमेशा आती थी और पहले कहा उसने कि 1 साल तक आपको 1000 वैष्णवों को खिलाना पड़ेगा। फिर वो एक साल पूरा किया उसने, फिर गया उसके पास में, अभी मेरे पास विवाह करो, दे और 2 साल करना पड़ेगा। तो फिर अगले 2 साल में वो नम्र बन गया, हाँ, मतलब वैष्णवों की सेवा से, बड़ी महान भक्त थी वो। तो जजिंग भी मेरी नाइसली कि उसका भाव बदली होगा ही नहीं, हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं इसका। तो उसके बाद में फिर जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ, वैष्णवों की सेवा में दिल लगा उसका, उसके बाद में कुमुदबाली ने उसके साथ विवाह किया और डकैती करना छोड़ दिया, एक बुरा कर्म खत्म हो गया, बुरा भाव भी खत्म हो गया और संत जैसा बन गया वो कुमुदबाली की दया से। ये संतों का प्रभाव होता है। हाँ, संत के संपर्क में आने के बाद में हृदय परिवर्तन होता ही होता है। हमारे मराठी में कहावत है, नेगेटिव कहावत है वो, पता है आपको, ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला, वाण नहीं पण गुण लागला। संघ में आने के बाद में कोयले की खान में जाएंगे, समझो आप बच्चों को स्कूल से ट्रिप लेके जा रहे हैं, आज हम कोयले की खान का दर्शन करेंगे और विजिट करेंगे उसको, तो जब निकलेंगे वहाँ से सबके शरीर में कहीं ना कहीं दाग काला लगने वाला है, क्योंकि आप कहाँ गए थे, कोयले के कान में गए थे। सो यू हैव टू गेट द स्टेन ऑफ द कोल। वैसे ही संत के संग में हम लोग कितना भी नापसंदगी में जाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ तो लगेगा आपको दाग उसका। अभी ये गया था कुमुद बाले के पास विवाह करने के लिए, कोई सत्संग करने थोड़ी गया था वो। चलो बैठ के भजन करेंगे साथ में, सत्संग करेंगे, विवाह करने के भाव से गया था, कांटेक्ट कर रहा था उसके साथ विवाह करने के लिए। लेकिन चूंकि वो भक्त थी, उसकी संग के वजह से, उसके आकर्षण की वजह से ये खुद भक्त बना, डकैती छोड़ दिया, उसका भाव परिवर्तन हो गया, विवाह हो गया उसके साथ, वो फिर भक्त की तरह रहने लगा। उसके बाद में वो इतना वैष्णव भक्ति में आसक्त हो गया कि वैवाहिक जीवन का जो होता है ना एक आनंद पुरुष और स्त्री के बीच में, उसके प्रति भी उसका आकर्षण नष्ट हो गया, और पति पत्नी मिलकर केवल भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करते थे। मतलब अपने काम वासना पर विजय प्राप्त किया उसने, वैष्णवों की सेवा प्राप्त। यहाँ पर गुरु महाराज बताते हैं कि वैष्णव कितना महान जीव है, भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण वैष्णव है। और भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन मेरी पूजा नहीं करोगे और मेरे भक्त की पूजा करोगे, उनकी सेवा करोगे, तो मैं अधिक प्रसन्न हो जाऊंगा। मद भक्ता पूजा व्याधिका, अगर मेरा ध्यान आपको आकर्षित करना है तो मुझसे अधिक मेरे भक्त की सेवा करो, ये भगवान ने स्वयं कहा है। और वो स्वयं भी ऐसे नहीं खाली बोलते नहीं है, उसने अपने भक्त का, अर्जुन का सारथी बनकर सेवा किया। और कितने नामदेव और कितने ऐसे भक्त हैं ओडिशा में, महाराष्ट्र में, हर जगह पर, साउथ इंडिया में भी है, जगह जगह पर भगवान के ऐसे भक्त हैं जो तो भगवान ने रूप बदलकर उनका सेवा किया। यहाँ तक कि एक भक्त था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जगन्नाथपुरी के समुद्र में बीच रात को दस्त लग रहे थे और वो बेहोश सा पड़ गया था, वहाँ पर आकर जगन्नाथ भगवान ने उनके दस्त साफ किए और उसको पुनर्जीवन प्राप्त करा दिया। तो वो जैसे ही वो व्यक्ति आया, जो भी रूप बदल कर भगवान आए, उस टट्टी साफ करने लगे उसका। तो वो भक्त था भगवान का, वो समझ गया इतनी बीच रात में कौन आ सकता है, एक भगवान ही आ सकते। तो प्रणाम करने लगा, स्तुति गाने लगा। बोले क्यों स्तुति गा रहे हो, मैं तो आम आदमी हूँ। नहीं भगवान ऐसे मत कहना आप मुझे, अपना रूप नहीं छुपाना मेरे साथ में, इतने बीच रात में, इतने संकट में, रात को ठंड के समय कौन आ सकता है, ये तो आप ही हो भगवान। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा भक्त के प्रेम की वजह से। हाँ ऐसे कई कथाएं हैं, नामदेव जी ऐसे एक बार ब्रह्म राक्षस को दर्शन किया उन्होंने। ब्रह्म राक्षस ये 11 प्रकार के भूत होते हैं, सबसे पावरफुल ब्रह्म राक्षस होता है। तो ब्रह्म राक्षस को देखकर नामदेव ने कहा, अरे भगवान आज तो विश्व रूप में आए हो। तो ब्रह्म राक्षस अपना नक्शा दिखा रहा था पूरा, तो बार बार नामदेव कह रहे थे, अरे नामदेव भगवान कह रहे, भगवान को बोले भगवान आप क्यों ऐसा सब नाटक कर रहे हो, अभी आप दर्शन दे दो, ये आज क्या आपने अजीब उदाहरण किया है। संतों की दृष्टि कैसी होती है, सब में भगवान को देखते हैं, ब्रह्म राक्षस के अंदर भी भगवान को देख रहे हैं। तो आखिर में ब्रह्म राक्षस का हृदय फाड़ कर विट्ठल भगवान को प्रकट होना पड़ा, इस श्रद्धा को देखकर। ही मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम द हार्ट ऑफ ब्रह्म राक्षस ऑल्सो, दैट इज द पावर ऑफ अ डिवोटी। तो भक्त जो है बहुत महान व्यक्ति है। लोग समझते हैं कि ज्ञानेश्वर भगवान ने योग से दीवाल को चलाया, लेकिन सत्य तो ये है कि ज्ञानेश्वर भगवान, ज्ञानेश्वर भक्त इतने बड़े भगवान के संत थे, भक्त थे वो, कि भगवान ने स्वयं दीवाल को चलाया, लोगों को बताने के लिए कितने महान व्यक्ति है। ऐसे कई कहानियाँ हैं कि भगवान ने अपने जीवन में भी अपने भक्तों का सेवा किया है। पांडवों के दास बनकर रहे वो, किसी का दूत बनकर जाना मतलब क्या है, यू हैव टू बिकम ऑर्डिनरी पोजिशन, बिकम मैसेंजर। पांडवों का रूप मैसेंजर बनकर भगवान अपमान सहन करने के लिए गए थे उधर कुरुक्षेत्र में, क्या बोलते उसको, हस्तिनापुर में। पता था कि दुर्योधन सम्मान नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी भक्त के प्रेम की वजह से दूत बनकर गए, अपमान सहन किया और फिर लौट कर आए। क्या मैसेज दिया उन्होंने, कम से कम 5 गांव दे दो। मतलब दीन होकर अपने भक्त के लिए, दीन लाचार बनकर, जिनका 5 राज्य प्राप्त करने का अधिकार था, उनके लिए दीन होकर 5 गांव मांगने के लिए गए थे। इमेजिन, वो भी नकार दिया गया, ऐसा अपमान किया गया, अरे 5 गांव क्या, सुई के नोक पर जितनी जगह होती ना उतना भी नहीं देंगे, ऐसे बोलकर भगा दिया गया। ऑफकोर्स वो भगवान है, उन्होंने विराट रूप प्रकट किया वहाँ पर। तो ऐसे भगवान की अपने भक्तों के ऊपर भक्ति है, भक्तवत्सल भगवान, दीनवत्सल भगवान है वो। तो ये कहाँ कहाँ पर आया संपर्क किसका? वैष्णव के संघ के वजह से तिरुमंगाई का जीवन बदल गया। उसके बाद में उसने बहुत प्रचार किया, वो संत बन गया, तिरुमंगाई अलवार महान भक्त बन गया। उसने सारे दक्षिण भारत में प्रचार किया और कई हजारों शिष्य बने उनके, राजा से लेकर हाँ जमींदारों से लेकर कई प्रकार के लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। उसमें इनका प्रचार का प्रभाव इतना तेज था कि चार योगी इनके भक्त बने, 4 मिस्टिक योगीज। हमने अपने प्रवचन में पहले भी ये योगा के सिद्धि के बारे में बात किया था। हाँ, ये सिद्धि जो है ये हमारे भक्ति के जीवन के लिए काफ़ी डाइवर्शन है, डिस्ट्रैक्शन है, डिविएशन। ये 4 सिद्धि तो कैसे थे? एक की सिद्धि ऐसी थी कि वो पानी के ऊपर चलने में बहुत कुशल था। 1 योगी वॉज वेरी एक्सपर्ट इन वॉकिंग ऑन द वाटर। दूसरा योगी जो था उसके बाद में ऐसी कला थी कि कोई भी ताला वो हमेशा कभी भी खोल सकता था, ही वॉज एबल टू ओपन द लॉक एनी टाइम एनी लॉक। तीसरा योगी था उसके अंदर शक्ति थी कि वो किसी की छाया पर पांव रखेगा तो आदमी ब्लॉक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपकी छाया पर कदम रखा, शैडो के ऊपर पांव रखा तो आप वहीं कभी फिक्स हो जाओगे, अरेस्टेड विदाउट एनी चेन्स। और चौथे वाले में ऐसी शक्ति थी कि वो बात चालू करेगा किसी का करने के लिए तो जब बात सुनने वाला एकदम कम्प्लीटली मेस्मराइज, हिप्नोटाइज हो जाएगा, ऐसा भूल जाएगा कि उसको याद ही नहीं आएगा वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है आजू बाजू में, नथिंग ही वुड अंडरस्टैंड। उसके बात में ऐसी मोहिनी थी कि वो किसके साथ में बैठ गया बात करने के लिए तो उसकी आंखों में अगर देखा उसने बात करने लगा तो फिर उसी में वो फंस जाएगा और बाकी सब कुछ भूल जाएगा। ऐसे 4 योगी उसके भक्त बने, लेकिन बाद में उसने योग का अभ्यास नहीं किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं कि भक्त बनने का अभी योग सिद्धि का काम चालू रखने का है। हाँ, बाय द वे भक्ति ये एकमात्र अनन्य एक्टिविटी, एक बार आदमी भक्त बनता है सब कुछ छोड़ देता है और सब जो सिद्धियाँ उनके पीछे पीछे भागती है। तो फिर वो श्रीरंगम में आए। ये सब कथा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब इतिहास के बाद में संत बनकर अपना आखिरी जीवन जो है, मतलब जीवन का बहुत सारा समय यहाँ बिताने के लिए रंगनाथ के चरणों में यहाँ पर आए। तो देखा तो क्या है, बहुत ख़राब अवस्था थी यहाँ पर, सारा मंदिर जो है जीर्ण हो चुका था, सब वालुका से और कई युगों से यहाँ पर वालू जमीन का प्रभाव से, राजा ने बहुत कोशिश भी किया था लेकिन इतना सारा जीर्ण अवस्था में मंदिर था। और दूसरा था कि एक जगह पर बहुत गरीब लोग थे, इतने गरीब खाने पीने के लिए मोहताज थे, और एक जगह में इतने अमीर थे, उनके पास इतना धन था, लेकिन वो ना मंदिर में ना गरीबों को कुछ दान देते थे, हमेशा मजाक उड़ाते थे गरीबों का और उनका लूट कर उनको शोषण करके और धन कमाते थे। तिरुमय अलवार को बहुत दुख हुआ उसको देखकर, ये कैसी भावना है, तुमको भगवान ने इतना सारा दिया हुआ है फिर भी भगवान के लिए तुम कुछ नहीं देते, व्हाट इज़ द यूज़? हमारे पास लाखों रुपए करोड़ रुपए बिजनेस है, नौकरी है, प्रॉपर्टी है, हाँ सब भगवान का दिया हुआ है, हमको भगवान को दान देना चाहिए अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए। एक महत्वपूर्ण अंग है वो दान देना, यात्रा में आते तो दान देना चाहिए, आपकी तरफ से दान मंदिर में कुछ ना कुछ फूल या फूल की पंखुड़ी होनी चाहिए। तो वो फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया जगन्नाथ क्षेत्र में, सभी अमीर लोगों को जा जाकर उन्होंने विनती करना शुरू किया कि आपका धन जो है उसे भगवान का दिया हुआ है, जब आप मरोगे तो कुछ आपके साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, ना आप भोग पाओगे या यहीं रहेगा, आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, आप भगवान के मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए दान दे दो। लेकिन हर एक अमीर आदमी ने उनका मजाक उड़ाया और उनको वहाँ से भेज दिया अपमानित करते हुए। कई साल तक अपने शिष्यों को लेकर उन्होंने हर अमीर आदमी के घर जा जाकर हाथ जो जोड़ कर पाँव पड़ पड़ के विनती किया कि मंदिर के लिए कुछ करो। फिर कई साल के बाद में उनको ध्यान में आया कि ये सब लोग बहुत दुष्ट लोग हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, इनको लूटना होगा। उन्होंने मीटिंग किया, इनको लूट लूट कर उनका धन जो है जो भगवान का है वो तो भगवान के मंदिर के लगाना होगा। तो चार योगी उठे, उन्होंने कहा महाराज जी गुरुदेव हमारे पास अच्छी अच्छी योग्यता है, हाँ तो वे प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं, मतलब पहला बोलता है कि मैं जाकर वो अमीर के घर में जाऊँगा और अमीर से संभाषण शुरू करूँगा, आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू हिम। जैसे वो बात करेगा तो वो एकदम पूरा हिलगेट में सम्मोहित हो जाएगा वो, तब जाकर दूसरा बोलेगा कि मैं जाके तिजोरी की चाबी जो है खोल दूंगा और धन लेके भागूंगा, और वो भागने के समय कोई अगर पकड़ने को आया तो तीसरा बोलता है कि मैं छाया पर पाँव दूंगा उसके, छाया पर पाँव देकर खड़ा कर दूंगा उसको, और चौथा बोलता है कि अगर कोई मेरा पीछा कर करके वैसे भी आगे लगेगा तो मैं समुद्र में चलने लगूंगा आगे जाकर, तो कैसे अंदर आएगा समुद्र में। इस तरह से हम जाके सबको लूटेंगे। तो इस तरह से तिरुमंगई अलवर ने 60 साल तक, हाँ अप टू 60 ईयर्स उन्होंने बहुत डकैतों को भी हायर किया था इसके लिए, मतलब मेन चार लोग बाकी असिस्टेंट लोग निकालने के लिए। अभी वो चाबी तो खोल दिया लेकिन अंदर सामान पड़ा है तो उसको निकालना है ना, निकालना है, थैली में डालना है, पैक करना है, उसको लाइन से लेके जाना है, फिर दूसरा आदमी खड़ा रहेगा वो पाँव देगा, फिर वो आगे भागते रहेंगे, फिर आगे तीसरा आदमी उसको देना है वो जल में चलेगा, ऐसा पूरा सिस्टम था, पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम था उनका। 60 साल तक उन्होंने लोगों को लूटा इस प्रकार से, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पावे जी, कि ऐसे ही मिस्टेक लोग हैं, ऐसे ही जादूगर लोग हैं कि खाली बात करने सब लोग ऐसे मौत हो जाते हैं। राजा के घर में भी गए वो ऐसे करने के लिए, हाँ लेकिन राजा को फिर उन्होंने छोड़ दिया। राजा ने अपने इनका इनका इतिहास समझते हुए बहुत सारा धन जो है वो दे दिया, लेकिन राजा के पास कंप्लेंट गई थी ना, राजा के घर में भी गए थे, ये सब ट्रिक चलाया उन्होंने। तो राजा ने ये समझ कर उनको बताया कि मैं सब पता है आप भक्त लोग भगवान के हो, मंदिर बांध रहे हो, मेरा ही कार्य कर रहे हो, ले लो, बहुत धन लगाया राजा ने। ऐसे भी कहा गया कि इनके लिए लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रकट हो गए उनका कृपा करने के लिए, तिरुमंगई अलवर के। बहुत सुंदर कहानी इनकी। 60 साल के बाद में ये मंदिर पूरा हुआ। फिर कैसा मंदिर बनाया उन्होंने देखिए आप, ये आपको आज जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है वो तिरुमंगई अलवर द्वारा बनाया गया मंदिर दिखाई पड़ रहा है। इसके 7 परिक्रमा हैं, 156 एकड़ एरिया है इसकी, और 7 परिक्रमा है इसकी, 156 एकड़ की एरिया है, 7 परिक्रमा है, और 21 गोपुरम हैं, और जो राजगोपुरम है वो 236 फीट ऊंचा है, उसमें 13 थर है, 13 टीयर्स, और श्रीरंगम को उन्होंने रामानुजाचार्य ने जो 108 दिव्य देशम बनाए थे उसमें सबसे श्रेष्ठ दिव्य देशम जो है वो श्रीरंगम क्षेत्र है। तो 60 साल के बाद में इन्होंने इतना सुंदर दीवारें और कवाने और खंबे और अलंकृत करके उनको कार्विंग करके इतना बड़ा शहर बना दिया पूरा, हाँ इतना बड़ा गोपुरम बना दिया। उसके बाद में जब वो मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ तो जितने डाकुओं को उन्होंने मेंटेन किया था 60 साल तक, जवान बच्चे थे डाकू, वो बूढ़े हो गए, उनको चाहिए था पैसा। आपको एक बताना भूल गया बाद में कि 60 साल तक जब ये डकैते का काम चल रहा था, अपने सारे शिष्यों के साथ में तिरुमंगई अलवर झोपड़ी में रहकर भिक्षा करके खाना खाते थे। ये चोरी किया हुआ जो खाना जो धन था अमीरों का उसमें से एक फूटी कौड़ी का भी उन्होंने लाभ नहीं लिया अपने लिए। अपना जीवन जैसे साधु लोग जीते हैं वैसे ही भिक्षा करके रोज खाना है, झोपड़ी में रहना है नदी किनारे कावेरी के किनारे, और वहीं रहकर हर एक फूटी कौड़ी का उन्होंने मंदिर में इस्तेमाल किया। लेकिन डाकू लोगों को यह अभाव नहीं था, उन्हें पैसे मांगना शुरू कर दिया। तो बहुत चर्चा हुई इनके बीच में क्या करना चाहिए, सब लोग पैसे मांग रहे हैं, उनको जाना है, अभी काम तो पूरा हो गया, उनको जाना है अपने गाँव में, लेकिन सब पैसा तो भगवान की सेवा में लगा दिया, उनके पास कुछ पैसा नहीं था, हर एक फूटी कौड़ी भी स्वर्ण मुद्रा जो है वो भगवान की सेवा में लगा दिया। ये लोग जिद कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तो फिर चार योगियों ने फिर तय किया भाई हमारे पास कुछ तो है तो नहीं है और इनसे पीछा छुड़ाना कैसे। तो एक ने बोला कि आपको पता नहीं है ये महाराज जी है ना तिरुमंगई अलवर, इन्होंने समुद्र के अंदर जल छिपा के रखा है, इतना जल अपने लिए जमा के रखा है वो समुद्र के अंदर छुपा के रखा है और खुद बहुत गरीब दिखाई पड़ते हैं, तो हम सब लोग आपको समुद्र के अंदर जहाँ पर रखा है हमको पता है, तो हमने भी सहायता किया उसके लिए, वहाँ से आपको धन दिला देंगे। ऐसे करके एक योगी जो था चार योगियों ने मिलकर उनको कन्विंस किया। पहले योगी जो था बात करने वाला, उसने उनको मेस्पराइज किया, समझा दिया कि आपका ऐसा ऐसा है, कन्विंस करते कि आपको जाना है, अभी इनके साथ जाना है। तो वो बोट में सब लोगों को डालते हैं और बोट में छेद डालते हैं और वो बोट लेकर समुद्र में अंदर जाते हैं और धीरे 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 बोट में पानी भरता है और सब लोग डूब जाते हैं, फिर ये चलकर वापस आता है। तो आपको इसमें से कोई भी कार्य का नकल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत अद्भुत अलौकिक व्यक्ति थे, इसकी हम लोग क्या कहते हैं, इसको अनुकरण नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इमिटेट देम। वी हैव टू ओनली एक्सेप्ट द स्पिरिट, जो उनका भाव था, भाव का सार क्या है उनका, भगवान की सेवा। लूटा हुआ धन उन्होंने कभी भी एक बार भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, वो भिक्षक वो भिक्षुक बन के रहे भगवान की सेवा में। तो तिरुमय अंगा अलवर का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि यमुनाचार्य, राजा कुलशेखर, रामानुजाचार्य, हाँ गोष्ठीपूर्ण, ये जितने महान संत हुए हैं, इन सब के द्वारा ये पूजित हैं। और आप जाएंगे ना, मंदिर भगवान विष्णु का है लेकिन तिरुमंगा अलवर का दर्शन आपको मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि श्रीरंगम क्षेत्र के जीर्णोद्धार में इनका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इतने हजारों साल पूरे हो गए हैं, फिर भी आपके सामने इतनी भव्य गौरव के साथ में इतना मंदिर आपके सामने प्रस्तुत है, इतना भक्कम मंदिर उन्होंने बनाया। आने वाले कई हजारों पीढ़ियों तक ये रह सकता है, ऐसा मंदिर बनाया है, इसलिए हम भी आकर उनका दर्शन कर सकते हैं। तो सभी लोगों ने अपने अपने मंदिरों में तिरुमंगाई अलवर का विग्रह स्थापन करके उनको एक सम्मान का स्थान दिया हुआ है। अभी हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सब मंदिरों में आपके इनके स्थान मिलेंगे। हाँ, तो सभी लोग हम लोग लास्ट में, अभी किसका ऋणी होना है आपको, तिरुमंगा। कितने लोगों को नाम बताया मैंने, ब्रह्मा जी के बाद में, हाँ सूर्यदेव, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, फिर धर्मवर्मा और फिर तिरुमंगा अलवर, फिर राजा किली, बीच में राजा किली भी है, उन्होंने भी उसका उत्खनन किया पूरा, लास्ट में धर्मवर्मा। और उसके आगे भी हमको बहुत लोगों का ऋणी रहना है, क्योंकि रामानुजाचार्य ने फिर यहाँ पर आकर खोया हुआ भक्ति का कल्चर जो है वो स्थापन किया। अगर कोई मंदिर होगा खाली और भक्त नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा है। बीच में मुसलमानों ने इस पर हमला भी किया था, मुगलों ने हमला किया, कई सैकड़ों साल पर कब्जा किया। अभी हम लोग जहाँ जाने वाले हैं, जहाँ प्रसाद लेंगे, वहाँ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो उसके पहले ही श्रीरंगम के विग्रह को लेकर भक्त लोग चले गए थे। एक स्थान है गोपुरपट्टी नाम का, वहाँ पर कई साल, सैकड़ों साल वहाँ पर सेवा किया गया। फिर मुगल राजा को एक हिंदू राजा ने आकर परास्त कर दिया और तभी वो जो वैष्णव कल्चर खो गया था पूरा मुसलमानों के राज्य होने की वजह से, वो रामानुजाचार्य ने आकर पुनः प्रस्थापित किया। अपने 120 साल के जीवन में 80 साल रहकर रामानुजाचार्य, जो अनंत शेष के अवतार हैं, जो भगवान जिस पर विश्राम करते हैं वो शेष के अवतार रामानुजाचार्य, उन्होंने 80 साल यहाँ रहकर पूरा रंगनाथ जी भगवान का पूजा अर्चा पद्धति और वैष्णव कल्चर, प्रचार, सेवा भाव, वो सब यहाँ पर प्रकट किया। इसलिए आपके सामने कैसा है, भव्य स्ट्रक्चर भी आपके सामने प्रस्तुत है और वो कल्चर जो उन्होंने प्रस्थापित किया वो आज भी आपको मिलेगा। वेरी मेटिकुलस वर्शिप ऑफ द डिटीज, कोई पंडा लोग आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, कोई हैरेस नहीं करेंगे, आपको गाली नहीं देंगे, हाँ आपको दर्शन अच्छी तरह से करने देंगे, जो आप देंगे वो लेंगे दर्शन, अगर आपको देना भी चाहिए लेकिन आपको यूपी की तरह हैरेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो कल्चर है यहाँ का। हाँ, सब ब्राह्मण लोग बहुत शुद्ध जीवन जीते हैं, अभी सब भ्रष्ट हो गए धीरे धीरे सबको, लेकिन अभी भी उनका जो क्या सार जो है ना, वो व्यवहार का, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। साउथ इंडिया में सब जगह पर आपको सुंदर व्यवहार मिलेगा। किसी ने बताया किसी का मोबाइल खो गया, वापस लगे दिया, हमारे रिक्शा वाले ने हमारा स्टैंड भूल गया, ये स्टैंड जो है रिक्शा में भूल गए थे, रिक्शा वाला रिक्शा घुमा कर वापस आके स्टैंड दे के गया हमको। क्योंकि ये आम जनता की प्रवृत्ति जो है यात्रियों को बड़ी प्रसन्नता देती है, यू फील वेरी हैप्पी, अरे पीपल आर सो नाइस हियर, सो हेल्पफुल, कोई चीटिंग नहीं करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।